अध्याय एक, सिंधु सभ्यता में धार्मिक विश्वास। सिंधु सभ्यता एक आद्यकालीन सभ्यता है। लिपि के पढ़े न जाने के कारण इस सभ्यता के धर्म को जानने का आधार पुरातात्विक स्रोत है। मुद्राएं, मृदभांड आदि पर अंकन, सवाधान, वेदिकाएं आदि इस धर्म की प्रकृति को दर्शाती हैं। पुरातत्व के स्रोत केवल कर्मकांडों को दर्शाते हैं। इस सभ्यता से जुड़े दार्शनिक पक्ष अनुतरित हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार सिंधु काल में मातृपूजा, देव पूजा जैसे पाशुपत, लिंग तथा यौनी पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि पूजा, परलोक विश्वास, पुनर्जन्म तथा जल की पवित्रता के सिद्धांत आदि प्रचलित थे। मातृदेवी की पूजा। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की पूजा अति प्रचलित थी। स्त्री की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। शायद पृथ्वी माता या प्रजन की देवी के रूप में इनकी पूजा उपस्थित थी। उत्तर वैदिक काल से शक्ति परंपरा में देवी की अर्चना देवों की पत्नी के रूप में हुई है। यह उनकी शक्ति पुंज है तथा सृष्टि के नियम को स्थापित करती है। दुर्गा, चंडी, काली आदि का अवतार राक्षसों के वध तथा नियम को प्रतिस्थापित करने के लिए हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में मातृदेवी प्रजनन से संबंधित ही प्रतीत होती हैं। ये देवियाँ शिरोभूषा तथा हार, चूड़ियाँ, मेखला तथा काड़शोभन धारण किए हुए हैं। कुछ मूर्तियों में धुएं के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे यह पता चलता है कि शायद कोई धूप बत्ती आदि जलाई जाती रही होगी। हड़प्पा से प्राप्त एक अभिलेख युक्त मुद्रा में दाहिने ओर स्त्री सिर के बल खड़ी है तथा उसके गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया है। बाईं ओर दो बाघ हैं। मुद्रा के दूसरी तरफ दो मानव आकृतियां हैं, जिनमें संभवतः एक खड़ा हुआ पुरुष है तथा एक बैठी हुई स्त्री है। पुरुष के हाथ में हसिया है। जॉन मॉशल ने इन्हें बलि प्रथा का प्रतीक माना है। इस मुद्रा में प्रजनन शक्ति का सिद्धांत स्पष्ट होता है। बलूचिस्तान एवं सिंधु के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक संख्या में मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, जिन्हें मातृदेवी का प्रतीक स्वरूप माना जा सकता है। लोथल को छोड़कर ये मातृदेवी की मूर्तियां अधिकांश क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं। इसी आधार पर स्टुअर्ट पिंगटन ने इसे सिंधु सभ्यता में सबसे प्रचलित पूजा माना है। हड़प्पा से प्राप्त एक अन्य मुद्रा में एक वृक्ष देवी का अंकन है। पीपल वृक्ष में दो शाखाओं के मध्य एक देवी विराजमान है, जो शिरोभेष तथा बाजूबंद धारण किए हुए हैं। वृक्ष के सामने एक घुटने पर झुके पुजारी एवं बकरे का अंकन है। इसमें निचले क्रम में सात स्त्रियों का अंकन है। इन सात नारियों को सप्तमात्रिक पूजा से संबंधित किया जा सकता है। हड़प्पा से ही प्राप्त एक पैर विहीन स्त्री मिंड मूर्ति को ओरल स्टीन ने भू देवी माना है। मातृदेवी का संबंध न केवल मानव जाति से अपितु पशु समाज से भी संबंधित किया जा सकता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में देवी को बकरे एवं बाघ के शरीर से संबंधित करके दिखाया गया है, जो आदिशक्ति के संहारक एवं शुभेच्छु स्वरूप से संबंधित दिखाई देता है। चाहुंदाड़ो तथा अन्य स्थानों से गर्भिणी नारियों की अंकित मिंड मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। डॉक्टर किरण कुमार थपलायल के अनुसार जिन मुंड मूर्तियों में गर्भिणी नारी का अंकन है, उन्हें पुत्र प्राप्ति हेतु चढ़ाई गई उद्देशिक भेंट माना जा सकता है। बलूचिस्तान स्थित कुल्ली नामक स्थान से पाई जाने वाली मिंड मूर्तियों में सौम्य स्वरूप प्राप्त हुआ है, लेकिन यहाँ की छाब संस्कृति की नारी में रौद्ररूप प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के दूसरी तरफ एक नारी एवं पुरुष दिखाए गए हैं। पुरुष के हाथ में हसिया जैसा कोई शस्त्र है। स्त्री बैठी है तथा उसके हाथ ऊपर उठे हैं तथा बाल बिखरे हैं। जॉन मॉशल का मानना है कि इस मुद्रा के दूसरी ओर दिखाई गई पृथ्वी देवी को बलि दिए जाने का अंकन है। मातृदेवी की पूजा स्वतंत्र रूप में या किसी देवता के शक्ति के रूप में होती है, यह स्पष्ट नहीं है। वैसे इनके अंकन से यह पता चलता है कि इनका कुमारी स्वरूप ज्यादा प्रचलित था। नारी आकृतियां भारत के बाहर मेसोपोटामिया, ट्रांसकॉलकेशिया, सीरिया, फिलिस्तान, क्रीट तथा मिश्न आदि देशों में भी पाई गई हैं। अतः यह पूजा सिर्फ सिंधु क्षेत्र में प्रचलित न होकर अन्य सभ्यताओं में भी प्रचलित थी। अमरी, कालीबंगा, रंगपुर, रोपड़, आलमगीरपुर में मातृदेवी की पूजा लोकप्रिय नहीं लगती है। लोथल में यह अनुपस्थित है। जॉन मार्शल, अनेस्ट मैके, मोर्टिमर, व्हीलर आदि विद्वानों के अनुसार सिंधु काल में मातृदेवी की पूजा सबसे ज्यादा प्रचलित थी तथा देवमंडल में इनका स्थान सर्वोपरि था। देव पूजा। सिंधुकालीन मुद्राओं से पुरुष पूजा का भी विधान प्राप्त होता है। मार्शल को मोहनजोदड़ो के खनन से एक मुद्रा प्राप्त हुई है। इस पर त्रिमुखी पुरुष पद्मासन मुद्रा में एक सिंहासन पर विराजमान है। इनके सिर पर सिंह युक्त शिरोधारी है, हाथ में चूड़ियां हैं तथा घुटनों पर आवृत है। आकृति के दाईं ओर हाथी और बाघ तथा बाईं ओर गैंडा एवं भैंस है। आसन के नीचे पैर के पास दो हिरण विराजमान है। यह मुद्रा पाशुपत मुद्रा कही जाती है। जॉन मार्शल इसे शिव का प्राकृत रूप मानते हैं। मैके के अनुसार इसी तरह की अन्य दो मुद्राएं भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हैं, परंतु उनमें उपरोक्त पाशुपत मुद्रा के सारे लक्षण नहीं प्राप्त होते हैं। इनमें से एक में देवता चौकी पर योगासन मुद्रा में विराजमान है। उनके हाथ दोनों ओर फैले हैं तथा हाथों में वे कई चूड़ियां पहने हैं। सिरोभूषण के रूप में एक टहनी है जिसमें पीपल जैसी पत्तियां निकलती दिखाई गई हैं। आकृति त्रिमुखी है, एक मध्यवर्ती तथा दो पार्श्वमुखी है। दूसरी मुद्रा पर आकृति भी सिंह युक्त है, उसके सिर से वनस्पति निकली दिखाई गई है, परंतु वह एक मुखी है और भूमि पर बैठी है। इन आकृतियों को एक वनस्पति देवता से संबंधित किया गया है। कालांतर में शिव का भी वनस्पति जगत से संबंध स्थापित किया गया। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मिट्टी की एक मुद्रा पर योगासीन मानव आकृति के दोनों ओर एक एक पुरुष खड़े हैं। पुरुष हाथ जोड़े हैं, उनके शरीर के पृष्ठ पर सर्प दिखाया गया है। यह पुरुष नाग देवता हो सकते हैं। इसी तरह एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बर्छे से भैंसे पर वार कर रहा है। मैके के अनुसार यह उत्तरकालीन शिव द्वारा दुंदुभी राक्षस के मारने की कथा से संबंधित हो सकता है, परंतु जितेंद्र नाथ बनर्जी के अनुसार यह मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुर्गा द्वारा महिषासुर वध का वर्णन है। अतः यह माना जा सकता है कि गुणों के आधार पर यह शिव का ही प्राकृत रूप रहा होगा। यहाँ मार्शल के तथ्य में सत्यता प्रतीत होती है। अधिकांश विद्वानों ने इसको स्वीकार भी किया है, पर डॉक्टर राय चौधरी नंदी के अनुपस्थिति के कारण इसको शिव स्वीकारने से इनकार करते हैं। इनके अनुसार प्राचीनतम शिव साक्ष्य हित्ती देव मंडली में वर्णित है। इनका प्रमुख देवता तेषु वैदिक रुद्र की भांति ही है एवं आंधी से संबंधित है। वृष आरुंड और त्रिशूलधारी है। उनकी पत्नी हेयत दुर्गा की भांति त्रिशूल धारिणी एवं सिंहवाहिनी है। वैदिक साहित्य के संदर्भों में भी इनका साक्ष्य मिलता है। तीन शीर्षों वाले त्रिशीर्षम छह आँखों युक्त सादाक्ष बैलों के सिंग युक्त विशिप्र के रूप में वर्णित है। ये उपाधियां पौराणिक व्याख्याओं में शिव के लिए प्रयुक्त हुई है। हड़प्पा से प्राप्त खंडित स्लेट पत्थर की मूर्ति जो नित्य मुद्रा में है का भी संबंध शिव के उग्र स्वरूप से जोड़ा जा सकता है। संभवतः यह नटराज का प्राकृत स्वरूप था। ऐतिहासिक काल में शिव की परिकल्पना त्रिमुखी त्रयंबक महायोगी योगेश्वर आदि रूप में की गई है। इनको पाशुपत भी कहा गया है। अतः यह हो सकता है कि संभवतः सिंधु का यह योगी शिव भक्ति का प्राचीनतम स्वरूप है। परंतु शिव की सवारी नंदी का मुद्रा में न होना हड़प्पा में शिव के संदर्भ को प्रश्नवाचक बनाता है। पशु पूजा मुद्राओं मिण एवं धातु मूर्तियों तथा मिंड भांडो आदि के आधार पर सिंधु सभ्यता की पशु पूजा को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला पौराणिक पशु पूजा, यह अर्ध मानव तथा अर्ध पशुओं का या कई पशुओं का संयोजन है। मैके को प्राप्त एक मुद्रा में शिंगी पशु एवं गैंडों के शारीरिक अवयवों को जोड़ा गया है। मोहनजोदड़ो की कुछ मुद्राओं पर अर्ध मानव तथा अर्ध पशु आकृतियों को शिंग युक्त बाघ पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है, जो मेसोपोटामिया की गिलगमेश परंपरा से प्रभावित दिखाई पड़ता है। माधव स्वरूप वस्त्र अर्ध पशु अर्ध मानव संयोजन की तुलना सुमेरिया के एनकिडू एवं एबाना परंपरा से करते हैं। दूसरा काल्पनिक पशु पूजा, काल्पनिक पशुओं का उदाहरण एक श्रृंग पशु है। यह सिंधु सभ्यता की सबसे अधिक मुद्राओं पर अंकित है। एस आर राव ने इसे पौराणिक विष्णु के वारह अवतार से संबंधित किया है। तीसरा वास्तविक पशु पूजा, वास्तविक पशुओं के कुबड़ वाले बैल की सबसे अधिक पूजा की जाती थी। गैंडा बाघ हाथी भैंस आदि भी श्रद्धा के पात्र थे। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उत्तर काल में हाथी भैंस शेर आदि को विभिन्न देवताओं से संबंधित किया गया। हाथी इंद्र का वाहन बना जबकि भैंसा यम का एवं सिंह को दुर्गा का वाहन माना गया है। वृक्ष पूजा, सिंधुवासी वृक्ष को दो रूपों में पूजते थे। पहला वृक्षों के जीवंत रूपों में कल्पना, दूसरा प्राकृतिक रूप में। हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर वृक्ष की शाखाओं के बीच देवता का अंकन है। इस पर सात नारियों का भी अंकन है जिनके सिर पर वृक्ष की टहनियां हैं। यह वृक्ष पीपल प्रतीत होता है। मैके इन देवियों को सितला एवं उनकी बहने मानते हैं। संभव है पीपल अपने वैज्ञानिक गुणों के कारण पूजा गया हो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर भी एक देवता पीपल की टहनियों के मध्य खड़ा है। इसी प्रभाव के कारण ही आर्यों में अस्तवत्थ पूजा का प्रारंभ हुआ। सिंधु सभ्यता में नीम की भी मान्यता स्वीकार की है। अग्नि पूजा काली बंगाल, लोथल, संघोल जैसे सिंधु सभ्यता कालीन स्थान अग्नि पूजा का साक्ष्य है। काली बंगा में एक स्थान पर सात आयताकार अग्नि वेदिकाएं एक कतार में प्राप्त हुई हैं। काली बंगा के निचले नगर में भी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। एसआर राव लोथल में भी वेदिकाओं का प्रमाण देते हैं जो वित्ताकार एवं वर्गाकार है। एक स्थान पर वेदी के साथ पक्की मिट्टी का चम्मच भी प्राप्त हुआ है। वेदी के पास बैल की जली हड्डियां, सोने का लटकन, करनी का मन का मृदभान तथा राख प्राप्त हुई है। अमरी नामक स्थान पर वेदिकाएं पाने का उल्लेख है, परंतु हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में अग्नि वेदिकाओं के निश्चित साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं। संकालिया का मानना है कि इन स्थानों पर भी ऐसे उदाहरण होंगे, परंतु उत्खनन अतिशीघ्र होने के कारण इनका पता नहीं चल पाया होगा। बलि प्रथा कालीबंगा से अग्निवेदी के समीप पशु की हड्डियां तथा हिरण के सिंग मिले हैं। लोथल से भी अग्निवेदिकाओं के पास जली हड्डियां प्राप्त हैं। यह बलि व्यवस्था का उदाहरण माना जा सकता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा जिसमें एक पशु हसियानुमा शस्त्र लिए है तथा सामने स्त्री का चित्र है जो बलि व्यवस्था से जोड़ा जा सकता है। जल की पवित्रता भारत में जल की पवित्रता अति प्राचीन है। इसका उदाहरण सिंधु सभ्यता से ही उत्पन्न माना जा सकता है। आज भी लोग कुंभ तथा अन्य अवसरों पर स्नान के लिए जाते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार जल पूजा का संकेत देता है। इस वृहद स्नानागार की माप 11.89 मीटर गुणे 7.1 मीटर गुणे 2.43 मीटर है। इसमें सीढ़ी उत्तरी दक्षिण सीमा में स्थित है। जल निकासी दक्षिणी पश्चिम सीमा में कुआं पूर्व में स्थित है। वस्त्र बदलने का स्थान वृहद स्नानागार के उत्तर में, संभवतः यही पुरोहित आवास भी है। जिप्सम तथा बिट्टूमीन का प्रयोग प्लास्टर के रूप में है जो जल रिसाव को रोकता था। सर जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता का आश्चर्यजनक निर्माण माना है। अन्य धार्मिक विचारों में स्वास्तिक चक्र ताबीज की भी प्राप्ति हुई है। स्वास्तिक तथा चक्र का प्रयोग सूर्य पूजा से हो सकता है। समाधान के साथ बर्तन तथा अन्य सामग्री प्राप्त है। यह मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म लेने का संकेत माना जा सकता है। रोपड़ में तो कुत्ते का अपने स्वामी के साथ समाधान किया गया है। ऐसा एक प्रमाण नवपाषाण काल में कश्मीर में बुर्ज होम में भी प्राप्त है। कालीबंगा तथा लोथल से प्राप्त युग्म समाधान को सती का संकेत माना जाता है, परंतु यह विचार उचित नहीं लगता। संभवतः सिंधु सभ्यता में मंदिरों का अभाव था। व्हीलर महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो के उत्खनन क्षेत्र के एचआर क्षेत्र में आयताकार मंदिर हो सकता है, परंतु यह मान्यता स्वीकार नहीं है। कुछ लोग मंदिरों के लकड़ी के होने की बात करते हैं जो समय की गति के साथ नष्ट हो गए, लेकिन यह तर्क भी स्वीकार नहीं किया गया है। यह निश्चित है कि सिंधु सभ्यता का धर्म बहुदेववाद पर आधारित था। लिपि न पढ़े जाने के कारण धार्मिक उद्देश्यों के पूर्ण रूप से विवरणीकृत करना संभव नहीं है। ऐसा विदित होता है कि सिंधु सभ्यता के धार्मिक विश्वास में धर्म एवं जादू दोनों का मिश्रण था, जिसे सिंधुवासियों ने भारतीय उपमहाद्वीप के भिन्न संस्कृतियों से आत्मसात किया था।